नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि अनगिनत लोगों को कलम उठाने के लिए प्रेरित किया है। नैटली गोल्डबर्ग की राइटिंग डाउन द बोन्स। पूरा नाम है राइटिंग डाउन द बोन्स, फ्रीइंग द राइटर विद इन।
हाँ, और ये किताब ना सिर्फ लिखने की तकनीक के बारे में नहीं है, ये असल में लेखन को एक एक ध्यान की तरह, एक साधना की तरह देखने का नजरिया देती है।
बिल्कुल, और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गई है ना, जहाँ हर कोई अपनी आवाज, अपनी बात कहना चाहता है।
सही कहा, ये उन सबके लिए है जो कभी खाली पन्ने को देखकर सोचते हैं अरे अब क्या लिखूं, या जिन्हें लगता है कि भाई मेरे पास ऐसा क्या खास है कहने को।
तो चलिए पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लें, नैटली गोल्डबर्ग।
हाँ, नैटली गोल्डबर्ग जो है वो एक अमेरिकी लेखिका हैं, कवित्री भी हैं, पेंटिंग भी करती हैं, और शायद सबसे ज्यादा एक टीचर के रूप में जानी जाती हैं।
और उनकी सबसे खास बात क्या है?
उनकी खासियत है
हाँ,
लेखन को जेन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से जोड़ना, और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उनके अपने जीवन के अनुभव से आता है।
अच्छा
जी, उन्होंने कई साल जेन गुरु डाइनेन काटागिरी रोशी के साथ जेन का गहरा अध्ययन किया है, तो जब वो लिखने पर बात करती हैं तो वो सिर्फ शब्द और वाक्य नहीं देख रही।
मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
हाँ, वो मन की गहराइयों, ध्यान और उस पल में जीने की बात कर रही होती हैं, और उनका नजरिया बहुत जमीनी है क्योंकि उन्होंने दशकों तक वर्कशॉप्स ली हैं, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है।
तो वो जानती हैं कि लोग कहाँ अटकते हैं।
बिल्कुल, वो लेखकों के आम डर, उनकी रुकावटें सब समझती हैं।
अच्छा, तो फिर किताब पर आते हैं, राइटिंग डाउन द बोन्स। इसका मेन आइडिया, इसका लक्ष्य क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि लिखने को लेकर जो एक हवा बना रहता है ना, एक डर सा, एक रहस्य जैसा, उसे तोड़ना।
हाँ, कि भाई ये तो बड़े लेखकों का काम है।
हाँ, वही किताब कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लिखने के लिए ना तो आपको कोई महान लेखक होना जरूरी है, ना ही किसी खास इंस्पिरेशन का इंतजार करना है।
तो फिर सामग्री कहाँ से आएगी?
आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, जैसी भी है, वो उबाऊ लगे, रोमांचक हो, उलझी हुई हो, वही आपकी असली सामग्री है।
और उस तक पहुंचने का तरीका?
तरीका है अपने पहले विचारों पर भरोसा करना, वो पहली कच्ची सोच जो दिमाग में आती है बिना किसी लाग लपेट के, बिना सेंसर किए। और किताब कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पर बहुत गहरे अध्याय हैं इसमें, जैसे जिन पहेलियां होती है ना।
हाँ, जो सीधा जवाब नहीं देती, सोचने पर मजबूर करती हैं।
बिल्कुल, और यही वो अपनी मशहूर लेखन अभ्यास यानी राइटिंग प्रैक्टिस विधि बताती हैं।
हाँ, उसके कुछ नियम हैं जो सुनने में बड़े सीधे लगते हैं, जैसे हाथ चलाते रहो, मतलब बिना रुके लिखते जाना है।
हाँ, और नियंत्रण खो दो, यानी वो जो अंदर बैठा एडिटर है ना, जो हर शब्द को तौलता है, उसे चुप करा दो थोड़ी देर के लिए।
व्याकरण, स्पेलिंग, इन सब की चिंता छोड़ दो।
हाँ, और विशिष्ट बनो, मतलब हवा में बातें नहीं, ठोस चीजें बताओ। यही अभ्यास इस किताब की जान है, उसकी नींव है।
तो चलिए इसी नींव पर थोड़ी और बात करते हैं। गोल्डबर्ग एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, शुरुआती मन, बिगिनर्स माइंड। इसका क्या मतलब है यहाँ?
शुरुआती मन का मतलब है किसी भी चीज को ऐसे देखना या उसके बारे में ऐसे लिखना जैसे आप पहली बार देख रहे हों, बिना किसी पहले से बनी राय के, बिना जजमेंट के, बच्चों जैसी जिज्ञासा।
ताजगी के साथ।
हाँ, और इसी से जुड़ा है वो नियम, अपना हाथ चलाते रहो, मतलब एक टाइमर लगा लीजिए 10 मिनट 20 मिनट, और बस लिखते जाइए, कलम रुकनी नहीं चाहिए।
और अगर दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए
तो लिखिए मेरा दिमाग खाली है, या कमरे में जो दिख रहा है उसके बारे में लिखिए, लिखते रहिए जब तक कोई और विचार ना आ जाए।
ये सुनने में जितना आसान है, शायद करने में उतना ही मुश्किल। और फिर वो कहती है नियंत्रण खो दो, ये तो हमारे बेसिक नेचर के खिलाफ है ना, हम तो कंट्रोल चाहते हैं।
हाँ, और इसीलिए ये अभ्यास इतना पावरफुल है, ये हमारे उस दिमाग को जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, उसे थोड़ी देर साइड में बैठने को कहता है,
ताकि कुछ और बाहर आ सके।
हाँ, ताकि वो गहरे, असली, कभी कभी चौंकाने वाले विचार सतह पर आ सके। और इसीलिए अभ्यास के दौरान काटना पीटना, सोचना, स्पेलिंग ठीक करना सब मना है, वो सब बात का काम है।
ठीक है, और एक नियम है, नब्ज पर वार करो, गो फॉर द जगुलर।
ये थोड़ा
इंटेंस लगता है।
हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुख या दर्द के बारे में लिखें।
अच्छा,
इसका मतलब है उन चीजों के बारे में लिखने की हिम्मत करना जिनमें ऊर्जा है, जिनमें सच्चाई का एहसास है, भले वो आपको थोड़ा असहज करे या थोड़ा डराए।
जहाँ डर है वहीं शक्ति है।
कुछ ऐसा ही, मतलब सेफ खेलने के बजाय उस चीज को छुओ जो वाकई आपके लिए मायने रखती है, जिसमें जान है।
समझ गया, ठीक है। तो ये तो हुआ कि कैसे लिखें, पर अब सवाल आता है किस बारे में लिखें। ये शायद सबसे बड़ा सवाल होता है कई लोगों के लिए।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर गोल्डबर्ग की एक बहुत ही प्यारी अवधारणा आती है, कंपोस्टिंग।
कंपोस्टिंग, हाँ, जैसे खाद बनाते हैं।
हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम किचन के कचरे से खाद बनाते हैं ना, जो पौधों को पोषण देती है, वैसे ही हमारे जीवन के सारे अनुभव, अच्छे बुरे रोजमर्रा के खास, वो सब हमारे मन के एक अदृश्य कंपोस्ट ढेर में जमा होते रहते हैं।
अच्छा,
और समय के साथ वो अनुभव गलते हैं, बदलते हैं और हमारे लेखन के लिए उपजाऊ मिट्टी बन जाते हैं।
वाह, मतलब जीवन में कुछ भी बेकार नहीं जाता, वो बोरिंग मीटिंग भी या बचपन की कोई भूली बिसरी याद, सब खाद है।
बिल्कुल, सोचिए ये विचार ही कितनी आजादी देता है। आपको कुछ महान या असाधारण होने का इंतजार नहीं करना है लिखने के लिए, आपकी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी ही असाधारण सामग्री से भरी पड़ी है,
बस उसे उस नजर से देखने की जरूरत है।
हाँ, इसीलिए गोल्डबर्ग कहती हैं कि कहीं से भी शुरू करो, तुम्हारी पहली कार की याद, किचन की मेज, वो नीला कप, कुछ भी।
और फिर वो जोर देती हैं विशिष्ट बने पे, बी स्पेसिफिक,
यानी सिर्फ महसूस करने के बजाय दिखाना।
हाँ, ठोस संवेदी विवरण,
मतलब सिर्फ ये मत कहो कि वो दुखी थी, बताओ कि उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं और मेज पर रखा चाय का कप कब का ठंडा हो चुका था। विवरणों से ही लेखन जिंदा होता है, असली लगता है। जैसे हम भारत में किसी शादी का जिक्र करें तो सिर्फ बड़ा मजा आया कहने के बजाय शहनाई की आवाज, गुलाब की पंखुड़ियों की महक, खाने की खुशबू, लोगों का शोर, ये सब बताने से बात बनती है।
सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई सामग्री की बात, पर लिखते समय वो जो अंदर की कश्मकश चलती है, वो आवाज जो कहती है ये क्या बकवास लिख रहे हो, तुमसे नहीं होगा, जिसे गोल्डबर्ग संपादक कहती हैं, उसका क्या करें?
हाँ, वो हमारा इनर क्रिटिक। गोल्डबर्ग कहती हैं, देखो उसे पहचानो जरूर, पर उसे लिखने के अभ्यास के बीच में मत आने दो। एडिटर का काम बहुत जरूरी है, पर वो बाद में आता है।
जब आप सुधार कर रहे होते, रिवीजन के टाइम।
हाँ, तब जब आप लिख रहे हैं, जब वो प्रवाह बन रहा है, तब उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे चुप कराना सीखना पड़ता है।
और वो अपना लिखा हुआ जोर से पढ़ने की सलाह भी देती हैं, अकेले में भी। क्यों?
क्योंकि जब आप शब्दों को आवाज देते हैं ना, तो वो ज्यादा वास्तविक लगते हैं, आपको उनकी लय समझ आती है, उनका वजन महसूस होता है।
अच्छा,
और कहीं ना कहीं ये उस डर को भी कम करता है कि कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। ये लेखन को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रहने देता, उसे शरीर और आवाज से जोड़ता है।
और ज़ेन का असर यहाँ भी साफ दिखता है। जैसे वो कहती हैं, हम कविता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जो हमने लिखा है उससे थोड़ी दूरी बनाना सीखना, डिटैचमेंट। एक बार आपने कुछ लिख दिया तो वो एक अलग चीज है, वो आप नहीं है। उसकी सफलता या असफलता को अपनी पहचान से पूरी तरह मत जोड़िए, ये लगाव हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसी तरह वो टोफू से लड़ने का मेटाफोर इस्तेमाल करती हैं।
टोफू से लड़ना?
हाँ, जैसे नरम टोफू से आप जोर लगाएंगे तो और उलझेंगे, वैसे ही अपने मुश्किल विचारों या भावनाओं से जबरदस्ती लड़ने के बजाय उन्हें बस देखो, स्वीकार करो और लिखते जाओ, संघर्ष मत करो।
दिलचस्प। और आखिर में वो लेखन को एक मैराथन की तरह देखती हैं, है ना, लंबी दौड़।
बिल्कुल, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक साधना है, जिसे लगातार सालों साल करना होता है। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, अनुशासन चाहिए,
और शायद प्रक्रिया से प्यार।
हाँ, प्रक्रिया से प्यार, न कि सिर्फ परिणाम से। इनाम सिर्फ छपी हुई किताब या वाहवाही नहीं है, असली इनाम वो समझ है जो आपको इस सफर में अपने बारे में मिलती है। और यही कातागिरी रोशी की शिक्षाएं काम आती हैं, वर्तमान में रहना, ध्यान देना, ये सब इस लंबी दौड़ के लिए जरूरी ठहराव और गहराई देते हैं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है लेखन को एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखना। ये सिर्फ क्राफ्ट नहीं, ये सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है।
हाँ, और दूसरा, उन पहले विचारों पर भरोसा करना सीखना। हमारा समाज हमें सिखाता है सोच समझ कर बोलो लिखो, पर गोल्डबर्ग कहती हैं कि असली माल तो उसी पहली अनफिल्टर्ड सोच में है, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना।
तीसरा, उस अंदर के आलोचक, उस संपादक को पहचानना और उसे उसकी सही जगह दिखाना, बनाने और सुधारने के काम को अलग रखना। ये परफेक्शनिज्म के जाल से बचाता है जो हमें अक्सर शुरू ही नहीं करने देता।
चौथा, ठोस और विशिष्ट विवरणों की ताकत, बड़ी बड़ी अमूर्त बातें करने से बेहतर है छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना और लिखना। जैसा हमने शादी वाले उदाहरण में कहा, अनुभव इन्हीं विवरणों में जीता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया के लिए ज्यादा संवेदनशील भी बनाता है।
और पांचवां, वो कमाल का आइडिया, कंपोस्टिंग। ये जानना कि जीवन का कोई भी अनुभव बेकार नहीं है। सब कुछ, अच्छा, बुरा, साधारण, सब हमारे रचनात्मक कुएं में पानी भरता है। ये सोच बहुत राहत देती है।
और आखिर में शायद ये कि प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है परिणाम से भी। सफर का आनंद लेना, ना कि सिर्फ मंजिल की चिंता करना। ये ज़ेन वाली बात जो लेखन पर भी लागू होती है।
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। जैसे वो कहती हैं, पहले विचारों की अपनी ऊर्जा, अपना जीवन और अपनी बनावट होती है। वे आपके भीतर उस गहरी जगह से आ रहे हैं जहां हड्डियां होती हैं। इसका क्या मतलब निकालें?
ये सीधा किताब के नाम से जुड़ा है, हड्डियों तक लिखना। ये कहता है कि हमारी जो सबसे सच्ची गहरी बात है, वो ऊपरी सजावट में नहीं, हमारी बुनियाद में है। उन तक पहुंचने के लिए हमें डर, शर्म, संकोच की परतें हटानी पड़ती हैं। ये अपने मूल सच पर भरोसा करने की बात है।
और वो जो लेखन अभ्यास के नियम हैं, उनका सार, अपना हाथ चलाते रहो, काटो मत, वर्तनी, विराम चिन्ह, व्याकरण की चिंता मत करो, नियंत्रण खो दो, सोचो मत, तार्किक मत बनो।
ये नियम एक तरह से प्रैक्टिकल टूल किट है, कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। ये दिखाते हैं कि लेखन कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं, बल्कि एक हुनर है जिसे अभ्यास से, अनुशासन से साधा जा सकता है।
अगर हम अपने ही रास्ते से हटने को तैयार हों।
और ये वाली लाइन, लेखन पश्चिम में अभ्यास का ज़ेन तरीका है। यह उपस्थित होने, यहाँ होने, अभी होने का एक तरीका है।
ये लेखन को सिर्फ कुछ बनाने के काम से उठाकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने का अभ्यास बना देती है। मेडिटेशन का ही एक रूप जो कागज और कलम से होता है। लक्ष्य सिर्फ कुछ लिखना नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूक होना है।
अच्छा, तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? लेखकों, कलाकारों के लिए तो फायदा साफ है, राइटर ब्लॉक तोड़ना, रोज लिखने की आदत बनाना। हाँ, पर ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, किसी भी काम में ये सोचने का, आइडिया निकालने का एक तरीका हो सकता है। कोई मुश्किल प्रॉब्लम है, उस पर 10 मिनट बिना रुके लिख डालिए, देखिए क्या निकलता है।
या कोई प्रेजेंटेशन देनी है या किसी से मुश्किल बात करनी है।
हाँ, उसकी तैयारी में मदद मिल सकती है। और व्यक्तिगत स्तर पर ये जर्नलिंग का एक बहुत ताकतवर तरीका है, तनाव कम करने, भावनाओं को समझने, अपने विचारों में स्पष्टता लाने के लिए, अपनी अंदरूनी उथल पुथल को कंपोस्ट करना।
और वो परफेक्शनिज्म वाली बात कि हर चीज पहली बार में ही परफेक्ट होनी चाहिए। लेखन अभ्यास का ये नियम कि शुरू में एडिट मत करो, ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम आ सकता है, क्यों?
बिल्कुल, कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, ये पहला ड्राफ्ट वाली सोच डर कम करती है। ये हमें कोशिश करने, गड़बड़ करने और सीखने की आजादी देती है।
तो आखिर में इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरे लिए शायद ये कि रचनात्मकता कुछ चुने हुए लोगों की जागीर नहीं है। गोल्डबर्ग इसे सबके लिए खोल देती हैं। वो कहती हैं, अगर आपके पास जीवन है तो आपके पास लिखने को कुछ है। आपकी आवाज मायने रखती है, बस कलम उठाइए।
और मेरे लिए सबसे गहरी बात है सजगता और रचनात्मकता का वो गहरा अटूट रिश्ता। ध्यान के गुण और अच्छे लेखन के गुण एक ही हैं, मौजूद रहना, ध्यान देना, बिना जजमेंट के देखना। ये किताब दिखाती है कि एक बेहतर लेखक बनने के लिए पहले हमें अपने मन और अपनी दुनिया का एक बेहतर, ज्यादा चौकस ऑब्जर्वर बनना होगा। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं, ये ज्यादा गहराई से जीने के बारे में है।
ये सोचने वाली बात है कि अगर लिखना खुद को जानने का एक जरिया है, तो हम रोजमर्रा की और कौन सी मामूली चीजों को इस नजर से देख सकते हैं? शायद खाना बनाना, या बागवानी करना, या बस किसी की बात ध्यान से सुनना।
हाँ, शायद हर वो काम जिसमें हम पूरी तरह डूब सकें, पूरी तरह मौजूद रह सकें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।